चार अध्याय 25 श्लोक 31। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। त्वत् आननं सुभ्रु सुतार लोचनं व्यालम्बी नील आलकवृन्द संवृतम उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाचकम् यत् ब्रीडया न अभिमुखम् सुचिष्मिते। त्वदाननं सुभ्रुसुतारलोचनम् त्वदाननं सुभ्रुसुतारलोचनं व्यालम्बिनीलालकवृन्दसंवृतम् व्यालम्बिनीलालकवृन्दसंवृतम् ऊनीय मे दर्शय वल्गुवाचकम् यद् व्रीडया नाभिमुखं सुचिष्मिते। त्वदाननं सुभ्रुसुतारलोचनं व्यालम्बिनीलालकवृन्दसंवृतम् ऊनीय मे दर्शय वल्गुवाचकम् यद् व्रीडया नाभिमुखं सुचिष्मिते। त्वदाननं सुभ्रुसुतारलोचनम् माता जी त्वात् तुम्हारा आननम मुख शुभ्र सुंदर भौहों वाली, सुतार सुंदर पुतलियों वाली, लोचनम आँखें व्यालंबी छितरे हुए, नीला नीले रंग के, अलक वृंदा केश राशि, संवृतम घिरे हुए, उनिया ऊपर उठाकर, मैं मुझको दर्शया दिखावो, बल्गुवाचकम सुनने में मधुर शब्दों वाली, यत जो ब्रीडया लज्जा से न नहीं अभिमुखम समक्ष आमने सामने सुचिस्मिते, हे सुंदर हंसी वाली स्त्री सुहासिनी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, हे सुंदरी सुंदर भाव हो तथा आँखों से युक्त तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है, जिस पर नीले केश बिखरे हुए हैं, साथ ही तुम्हारे मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है, फिर भी तुम लज्जा से इतनी आवृत हो कि मेरी ओर देख नहीं पा रही। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम हंसो और अपना सिर उठाकर मुझे देखो। तो तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से आकृष्ट होता है तो ऐसा ही कहता है, प्रकृति द्वारा इस प्रकार बंध जाना मोह कहलाता है। जब कोई माया की सुंदरता से इस प्रकार मोहित होता है तो वह उसे भोगने के लिए आतुर हो उठता है। इसका विस्तृत वर्णन पुरंजन के इस उदाहरण से प्राप्त होता है, जो एक सुंदरी पर मोहित है। बद्ध जीवन में जीव मुख भौहों आँखों वाणी या अन्य किसी वस्तु से आकर्षित होता है। यदि संक्षेप में कहें तो प्रत्येक वस्तु आकर्षक बन जाती है। जब स्त्री या पुरुष एक दूसरे द्वारा आकृष्ट होते हैं तो सुंदर या असुंदर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रेमी को प्रेमिका के मुख पर हर चीज अत्यंत सुंदर दिखती है और इस तरह से वह मोहित हो जाता है। इसी आकर्षण के कारण जीव का इस भौतिक जगत में पतन होता है। भगवद्गीता 7:27 में इसका वर्णन मिलता है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, समस्त जीवात्माएं मोह में जन्म लेती है और इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्वों के कारण परास्त होती है। जीवन की यह अवस्था अविद्या कहलाती है। अविद्या का विलोम है वास्तविक ज्ञान। इस उपनिषद में विद्या तथा अविद्या का अंतर बताया गया है। अविद्या के द्वारा मनुष्य बद्ध होता है और विद्या से मुक्त होता है। पुरंजन ने यहाँ स्वीकार किया है कि यह अविद्या से आकृष्ट हुआ है। अब वह अविद्या का पूर्ण स्वरूप देखना चाहता है। अतः वह सुंदरी से प्रार्थना करता है कि वह अपना सिर उठाए, जिससे वह प्रत्यक्ष उसे देख सके। इस तरह वह उन विभिन्न अंगों को देखने का इच्छुक है जिससे अविद्या आकर्षक बनती है। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग क्रम से श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। जो नियमित आते हैं उनको स्पष्ट रूप से जानकारी है कि पुरंजन का इतिहास प्रस्तुत किया जा रहा है। पुरंजन कोई दूसरा नहीं है, जीवात्मा ही पुरंजन है। जैसा बार बार आप सुन चुके हैं कि पुरंजन का अर्थ सीधा देहधारी है, पुरम जनयति इति पुरंजन, जो देह निर्माण कर लेता है, देह निर्माण में कारण बनता है, उसको पुरंजन कहा जाता है। जीवात्मा पुरंजन है और यह देह खोज रहा था, ये नगर के अन्वेषण में था और भारतवर्ष में 9 गेट वाला यह जो नगर है, यह शरीर है, इसको पसंद पड़ा, इसको स्वीकार कर लिया और शरीर में वह आत्मबुद्धि कर लेता है। शरीर स्वीकार करता है तो अपने परिचय को, अपने आइडेंटिटी को भूल जाता है और शरीर से ही आत्मसात कर लेता है, तादात्म कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन जीव की दुर्गति यहीं तक सीमित नहीं है, इसके आगे वह शरीर से संबंधित पदार्थों का विस्तार करता है, उसमें मम बुद्धि करता है और यह मम बुद्धि की वृत्तियाँ अनेक हैं, सैकड़ों हैं, हजारों हैं, करोड़ों हैं, तो इस प्रकार वह बुरी तरह बंधन में फंस जाता है। इस बात को एक प्रतीक से, एक एलगरी से समझा रहे हैं। बुद्धि को यहाँ स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है और आप इस प्रसंग को समझ चुके हैं। वह जीवात्मा पुरंजन अपने नगर के बाहर भ्रमण कर रहा था, उद्यान में एक प्रमदा को देखा, स्त्री को देखा और स्त्री से वह आकृष्ट हो गया और आकर्षण का काम का यह भाषा है कि उसमें गुणाध्यास करा देता है। वो सामान्य स्त्री है लेकिन अब पुरंजन का उसमें गुण का इतना अध्यास है कि उससे पूछ रहा है तुम कौन हो, किसकी बेटी हो। वो चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रही है। अब यह विकल्प कर रहा है क्या तुम सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, ऐसे कई एक देवियों का नाम रख रहा है, अपने से बोलते जा रहा है। फिर कह रहा है कि ना, तुम तो देवी नहीं हो सकती हो क्योंकि तुम्हारा पैर पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। कोई भी देवी देवता हैं तो उनका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा होता है, वे इतने पवित्र होते हैं कि इस गंदे पृथ्वी पर पैर तक नहीं रखना चाहते। हम लोग इसी संसार में देखते हैं कि कुछ लोग बहुत तथाकथित स्वच्छ जीवन जीते हैं, उनके आवास में स्वच्छता होती है, वो क्लीन रहता है और कभी कभी उनको किसी निम्न स्तर के गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है, देखने जाते हैं तो एकदम वहाँ दो चार मिनट भी रुकना नहीं चाहते। उनका स्टैंडर्ड दूसरा है और उनके हिसाब से जो सामान्य गेस्ट हाउस है बहुत गंदा लगता है, और देवताओं के हिसाब से देखें तो यहाँ का इतना स्टैंडर्ड डाउन है कि वे आना नहीं चाहते हैं इधर। कोई बुलाता है, आह्वान करता है, मंत्र के अधीन है, आते भी हैं तो पृथ्वी पर पैर नहीं रखते। ये पुरंजन कह रहा है कि तुम देवी नहीं हो और जब तुम इस मर्त्य जगत की हो तो स्वाभाविक ही तुम किसी को पति बनाना चाहती हो, तो हमें ही यह सौभाग्य प्रदान करो, तो इसमें कोई आपत्ति है, तुमको कोई आपत्ति है। ऐसे वह स्त्री के प्रति पूर्ण आकृष्ट है। कैसे कैसे वह आकर्षित हुआ है कई एक श्लोक में आप विस्तार से सुन चुके हैं, हम इस विषय में फिर से विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। इस श्लोक में वह अपना गरिमा खो करके उस स्त्री से सीधे प्रार्थना करने लगा कि त्वदाननम शुभ्रसुतार लोचनम उनीय, एक अपने मुख को ऊंचा उठाओ, हमारे सामने करो। कोई भी स्त्री है तो उसमें स्वाभाविक लज्जा होती है और लज्जा उसका भूषण है, लेकिन यह काम की वृत्ति है कि लज्जा कोई काम में बहुत बाधा नहीं डालता है। एक तरह से स्त्री का यह एक संपत्ति है, जब तक उसके पास लज्जा है तो पुरुष से वर्ग का आकर्षण प्रबल रहता है, तो उसका एक संपत्ति भी है, आभूषण भी है। और लज्जा कोई फालतू का चीज नहीं है, लेकिन पुरंजन उस प्रमदा से, उस स्त्री से प्रार्थना कर रहा है कि अब बहुत लज्जा कर चुकी, अब लज्जा का त्याग करो, अपने मुख को हमारे सामने करो, सुचिस्मिते, कि तुम नीचे ही मुँह करके मुस्का रही हो, हंस रही हो, तो सामने मुँह करके हंसो। उसके मुख का वर्णन कर रहा है कि सुभ्रु, तुम्हारा जो भौहें हैं बहुत सुंदर हैं, सुतार लोचन, आँख सुंदर है, खास करके आँख के बीच में जो पुतली है वह बहुत सुंदर है, बहुत चंचल है, व्यालम भी नीला लकवृंद संवृतम। और मुख के विषय में कह रहा है कि तुम्हारी जो लंबी लंबी बाले हैं, काली काली बाले हैं, तो उस बालों से तुम्हारा मुख ढका हुआ है, तो उन्नीय में दर्श है बल गुवाचकम, तुम्हारे मुख से निश्चित ही सुंदर वाक्य निकलेंगे, तो तुम ऐसे मुख को हमारे अभिमुख करो, समक्ष करो, हमको कुछ सुनाओ, अपने वाणी से हमको सुखी करो, इससे मधु प्रदान करो। ऐसे पुरंजन स्त्री में पूर्ण आकृष्ट है और प्रार्थना कर रहा है, उसके अंदर स्त्री के रूप के भोग की इच्छा है, स्पर्श के भोग की इच्छा है, अपने इच्छा को प्रकट कर रहा है। एक चीज है ध्यान देने की है कि यह कोई विशेष घटना नहीं है। मैं इस विषय में बहुत बोलना नहीं चाहता हूँ, उसका दो कारण है। एक तो बहुत हम इस विषय में चिंतन नहीं किए हैं, ज्ञान नहीं है, और मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस चीज़ से परिचित नहीं है। दूसरे के विषय में जाने या न जाने, अपने विषय में सबको ज्ञान है कि कितना भारी आकर्षण है स्त्री के प्रति, कितना आकर्षण है। सच्चाई यह है कि इस संसार में जो भी गतिविधि हो रहा है सब स्त्री के आकर्षण के चलते चल रहा है, पूरा भूमंडल ही नाच रहा है, उसके सेंटर में स्त्री का आकर्षण है। स्त्री का आकर्षण क्या क्या फजीहत कराती है ये सब अपने मन को जानते हैं। आदमी कितना कितना ट्रिक करता है, कहाँ कहाँ दौड़ जाता है, कितना अपना स्तर खो देता है, तो थोड़ा सा स्त्री को देखने को मिले, थोड़ा बात करे, और स्पर्श प्राप्त करने के लिए तो कितना पैसा खर्चा करता है, कितना प्रतीक्षा करता है, कितने अपने स्तर को गिराता है, और सबके साथ लगा हुआ है। यह जो कारक है, यह स्थिति है, यह अपरिचित नहीं है, सबका परिचय है, खींच लेती है। लेकिन अब एक समस्या है कि माया का सबसे प्रबल रूप यही है, जो स्त्री को स्पर्श करने की भावना है, उसके स्पर्श सुख लेने की इच्छा है, यही माया का सबसे बड़ा रस्सी है, और इसी इच्छा के चलते व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है। और कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति के मन में कभी कभी संकल्प आता है कि इस आकर्षण से मुक्त हो जाए, वह साधना भी करता है लेकिन कभी कभी उसको लगता है कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, अपने को वह विफल अनुभव करता है। और इस विषय में अपना अनुभव सबको है ही है, हम लोग ब्रह्मचारियों के लीडर माने जाते हैं और हम लोगों को तो ऐसा अनुभव है, कई एक ब्रह्मचारी आकर के रोते हैं कि क्या इस आकर्षण से हम मुक्त नहीं हो सकते, क्या ये आकर्षण ऐसे ही बना रहेगा, बहुत निराशा की भावना से प्रश्न करते हैं। कि इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत निम्न स्थिति है, बहुत कठोर स्थिति है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस स्थिति से व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाएगा। भगवान की सृष्टि है, भगवान अपने सृष्टि के विस्तार के लिए इस आकर्षण को स्त्री पुरुष के हृदय में भरे हैं, क्योंकि यही आकर्षण है कि सृष्टि कर रहा है, प्रजनन कर रहा है, उसका पालन कर रहा है। कि भगवान का काम है सृष्टि करना, पालन करना, तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, जीव के हृदय में आकर्षण पैदा करके अपना कार्य करा रहे हैं, लेकिन भगवान जीवों के परम सहृदय हैं, वे ऐसी भी व्यवस्था दिए हैं कि यदि उस व्यवस्था का व्यक्ति अवलंबन करे तो यह आकर्षण समस्या ही नहीं रह जाएगी, बिल्कुल आकर्षण से व्यक्ति शून्य हो जाएगा। अरे आकर्षण की बात तो दूर है, ये जो जीवन के प्रारंभ में आकर्षण रहा है, स्त्री का स्पर्श किए हैं, उसको सुखद समझे है, उसका स्मृति आने पर वोमिटिंग होने लगता है, उल्टी होने लगता है, ऐसा भक्तों का रियलाइजेशन है। इस आकर्षण से हम कैसे पूर्णतः दूर हो सकते हैं, इस विषय में मैं चैतन्य महाप्रभु के विचार को प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, अंत लीला में प्रद्युम्न मिश्र की कथा आती है। प्रद्युम्न मिश्र एक विद्वान ब्राह्मण थे, भक्त थे, उनके कृष्ण कथा में बहुत रुचि थी। एक दिन वे चैतन्य महाप्रभु के यहाँ गए और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि हम कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, हमको कृष्ण कथा सुनाइए। चैतन्य महाप्रभु उनके विचार का अभिनंदन किए, कहे कि बहुत सुंदर विचार है, वास्तव में जीवन की संसिद्धि यही है कि कृष्ण कथा के प्रति रुचि हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहे कि हम कृष्ण कथा सुनाते नहीं हैं, हमारी तो इच्छा होती है तो हम राय रामानंद जी से कृष्ण कथा सुनते हैं। तो बहुत सुंदर बात है कि आप कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं तो आप राय रामानंद जी के पास चले जाइए। प्रद्युम्न मिश्र जी चैतन्य महाप्रभु की बात मान करके राय रामानंद के पास गए। राय रामानंद जी का जो सेक्रेटरी था, सेवक था, उनको बैठाया। प्रद्युम्न मिश्र काफ़ी देर तक बैठे रहे, इसके बाद वे पूछे कि राय रामानंद कब आएंगे, कहाँ हैं। तो उनका सेवक बतलाया कि आप थोड़ा और बैठिए, राय रामानंद जी एक एकांत उद्यान में दो देवदासियों का श्रृंगार कर रहे हैं। देवदासी का अर्थ यह है कि पहले के ज़माने में कोई कोई माता पिता अपने बेटी को भगवान की सेवा में अर्पित कर देते थे, तो वे लड़कियां मंदिर में ही रहती थी, भगवान की सेवा करती थी, उनको देवदासी कहा जाता था। अभी यह प्रचलन सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है, अभी देवदासी प्रथा का को बंद कर दिया गया है। और पहले ये प्रथा थी, राय रामानंद जी जगन्नाथ जी के सामने
कुछ नाटक प्रस्तुत करना चाहते थे, तो उसके लिए कई एक पात्र थे, लेकिन जो नायक नायिका थे राधा और कृष्ण के जो स्वरूप थे, या राधा और उनकी सखी थे, उसका श्रृंगार वे अपने से कर रहे थे। जिनको स्वरूप बनाना था वे एकदम किशोरावस्था के थे, युवावस्था के प्रारंभिक दिनों की वो लड़कियाँ थी, लेकिन उनको राय रामानंद जी अकेले उद्यान में लेकर के, एकांत उद्यान में लेकर के उनको अपने से स्नान कराए। स्नान के पहले भी उपटन लगाए, उपटन शरीर में लगा करके इसके बाद स्नान किए, इसके बाद विभिन्न प्रकार के सुगंधित तेल को लगाए मर्दन के शरीर का, और इसके बाद उनका श्रृंगार किए, पत्रावली रचे या बिंदी लगाना, विभिन्न प्रकार के गहना को पहनाना और उनके कपड़े को पहनाना, सब काम वे अपने से कर रहे थे। उसका कारण यह था कि जो नाटक प्रस्तुत करना है, गीत प्रस्तुत करना है, तो उसका क्या भाव होना चाहिए दूसरा व्यक्ति उतना अच्छा से नहीं कर पाता, उस भाव को वही समझ रहे थे, तो ठीक ठीक उस भाव को प्रस्तुत किया जाए, इसके लिए उसके अनुरूप श्रृंगार हो, उसके अनुरूप रंग हो, उसके अनुरूप शरीर की कांति हो, उसके अनुरूप पोशाक हो, ड्रेस हो, तो इसलिए राय रामानंद जी सब कार्य अपने से कर रहे थे। एकांत में उन लड़कियों को ले जा कर के, और कैसे पद गाना है और पद गाते समय मुख पर उसका क्या अनुभव आएगा, शरीर पर उसका क्या अनुभव आएगा, कैसे अनुभव को प्रकट करना है, ये सब एक एक चीज ट्रेनिंग देने के लिए वे एकांत में बैठे थे, और बार बार उनसे गीत गवाते थे, सुनते थे बहुत देर तक। और राय रामानंद जी का सेवक बतलाया कि वे देवदासियों का श्रृंगार कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, थोड़े देर में आएंगे। प्रद्युम्न मिश्र जी वहीं बैठे रहे, और कुछ देर के बाद राय रामानंद आए, उनको प्रणाम किए और कहे कि हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप यहाँ आए, लेकिन इसके साथ हमको दुख भी है कि आपको बहुत देर तक यहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ी, हमको बीच में कोई सूचना नहीं दिया, इसलिए बहुत देर तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, हमें खेद है इस बात का, लेकिन किस कार्य से आप आए हैं उस कार्य को बतलाइए, हम क्या आपकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन प्रद्युम्न मिश्र देखे कि आज तो बहुत देर हो गई है, अब आज कथा के लिए प्रस्ताव करना ठीक नहीं है, तो वे कथा के लिए प्रस्ताव नहीं किए, उनकी बात सुन करके, सामान्य बात करके वे अपने घर चले गए। दूसरे दिन वे फिर चैतन्य महाप्रभु के पास गए, और उस समय चैतन्य महाप्रभु के पास गए जिस समय चैतन्य महाप्रभु भक्तों के बीच में थे, कई एक भक्त उनके साथ थे। जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए प्रद्युम्न मिश्र, चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछे कि कृष्ण कथा का श्रवण किए, तो प्रद्युम्न मिश्र कहे कि नहीं, हमको अवसर नहीं मिला, क्योंकि राय रामानंद जी देवदासियों का श्रृंगार कर रहे थे। और प्रद्युम्न मिश्र के मन कौतुक भी था, भाई ये कैसा साधु, ये कैसा वक्ता है कि स्त्रियों को, लड़कियों को ले जाकर के एकांत में उनका स्पर्श कर रहा है, उनका श्रृंगार कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु इस बात को समझ रहे थे, वे प्रद्युम्न मिश्र से कहने लगे कि हाँ, नाटक के तैयारी के लिए देवदासियों का श्रृंगार करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु अपने से कहने लगे कि अद्भुत चेतना है राय रामानंद जी के, हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनका उनकी क्या चेतना है, क्यों उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे लगता है कि उनका शरीर काठ का हो, पत्थर का हो, ज्योति का स्पर्श करते हैं, कोई उनमें विकार नहीं होता है। वे कहने लगे कि वास्तव में राय रमानंद का शरीर तो चिन्मय है, पर एक बात तो यह है। और वे अपनी स्थिति बतलाने लगे कि देखिए, मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यास ग्रहण किया हूँ, लेकिन हमारी यह स्थिति है कि स्त्री के दर्शन की बात तो दूर है, किसी स्त्री का नाम भी कान में पड़ जाता है तो हमारे शरीर में भी क्षोभ हो जाता है, मन में भी क्षोभ हो जाता है, मतलब मन भी विकृत हो जाता है और शरीर में भी काम भाव के लक्षण आने लगते हैं। तो हम तो सन्यासी हैं, हमारी यह स्थिति है, लेकिन राय रमानंद स्पर्श करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उपटन करते हैं, पत्रावली रचते हैं, उनके गीत को बार बार सुनते हैं, सिखाते हैं, लेकिन उनके मन में कोई विकार नहीं है। निश्चित रूप से उनका शरीर अप्राकृत है और यह कोई आश्चर्य नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत देने लगे कि राय रमानंद की क्या स्थिति है, इस विषय में पूरा पूरा तो हम नहीं बतला सकते, लेकिन एक बात अवश्य कहेंगे कि कृष्ण कथा का ऐसा प्रभाव है, कृष्ण संपर्क का ऐसा प्रभाव है कि यह कोई आश्चर्य नहीं है। वे श्रीमद्भागवतम का श्लोक उद्धृत किए, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि विक्रीडितम ब्रजवधु विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो नृणयात अथ वर्णयति। अरे कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के मधुर लीलाओं का गान कर रहा है, ये श्रवण कर रहा है, श्रद्धान्वित। श्रील प्रभुपाद जी जोर देकर के कह रहे हैं कि इस बात को समझना चाहिए। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु शब्द दिए हैं करिया विश्वास, या विश्वास करके कि राधा कृष्ण का जो लीला है वह दिव्य है, अप्राकृत है, यह इसमें प्रकृति का, प्राकृतिक गुण का थोड़ा भी संस्पर्श नहीं है, इस चीज़ को जो समझता है। और तो करिया विश्वास, श्रद्धान्वित, श्रद्धा से युक्त होकर के इस कथा को सुनता है या वर्णन करता है, तो भक्ति परम उपलब्ध, ये श्रवण कीर्तन का यह फल होता है कि परा भक्ति को प्राप्त करता है। जिस भक्ति में जो स्तर प्राप्त करना चाहता है उस स्तर को प्राप्त कर लेता है। कामम प्रतिलब्ध, कामम का अर्थ है कि उसकी जो इच्छा है, भक्ति के जिस ऊंचाई को, जिस प्रकार के भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, ये भगवान की मधुर लीला सुनने का प्रभाव होता है कि उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है, मनमाना भक्ति को प्राप्त करता है। और हृदय रोग अपहुन्योति अचिरीण धीर, और जो हृदय का विकार है, हृदय है, जो हृदय में सोने वाला काम वासना है, अपहुन्योति इसको दूर कर देता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान के लीला का श्रवण कीर्तन का यह प्रभाव है, श्रद्धा से कोई श्रवण कीर्तन करे तो इसका यह प्रभाव होता है कि काम विकार को आसानी से दूर कर देता है। भगवान की इतनी उन्नत भक्ति में अवस्थित हो जाता है कि काम विकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति उस लीला में अभिनिविष्ट है तो उसके साथ ऐसा घटित हो रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं है। सिंपली कोई इस लीला का श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है श्रद्धापूर्वक, तो वह भी आसानी से काम विकार से दूर हो जाता है। फिर जो व्यक्ति इसी के चिंतन में लगा हुआ है, इसी में उसका चित्त लगा हुआ, इसी में अभिनिवेश है, इसी में विभोर हो गया, इसी में लीन हो गया है, तो उसके लिए स्त्री पुरुष की आकर्षण कोई समस्या ही नहीं है, इसका उसे अनुसंधान ही नहीं रहता है। और कदाचित उसकी सेवा की लालसा जग जाए, जैसा हम वंदना करते हैं मोर यही अभिलाष, हम अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि हमें विलास कुंज में राधा कृष्ण के नित्य लीला का दर्शन का अवसर मिले, और भी तुलसी जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा कीजिए कि हमें सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। यदि राधा कृष्ण की सेवा की उत्कट लालसा हमारे हृदय में उदित हो जाती है तो स्त्री पुरुष का आकर्षण जो हमारे लिए बहुत भारी समस्या है वो एकदम समस्या नहीं रहेगी, उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, कब वह समाप्त हो गया इसका पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उस अभिलाषा को जगाना पड़ेगा। यदि प्रिया प्रियतम की सेवा की अभिलाषा जग गई तो ये सब समस्या नहीं है। तो जो बहुत भारी समस्या हृदय रोग है, काम है, स्त्री पुरुष का आकर्षण है, इसके लिए हम कितना कितना प्रयास करते हैं लेकिन वास्तव में बाह्य प्रयास से सफलता नहीं मिलती है। और जो व्यक्ति इस समस्या पर विजय प्राप्त करना चाहता है, इसके ऊपर होना चाहता है, तो उसके लिए सबसे आसान बात है कि राधा कृष्ण के प्रिय प्रियतम के मधुर लीला का श्रवण करे, वर्णन करे। यह सुखद उपाय है और सरल उपाय है, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और श्रवण कीर्तन करेंगे तो स्वाभाविक ही सेवा की लालसा जग जाएगी, और जब सेवा की लालसा जग गई उस लाल वह लालसा हृदय में उतराने लगा, लालसा से हृदय अप्लावित हो गया, तब हम कहाँ चले गए, किस राज्य में हैं, हमारी क्या स्थिति हो गई, अब इसके भौतिक जगत से तुलना नहीं किया जा सकता, ये कुछ भी समस्या नहीं रहेगा। इसी से अपने जो आचार्य गण हैं, गोस्वामी गण हैं, तो प्रदर्शित किए हैं, वे सेवा की लालसा को व्यक्त किए हैं, बहुत बहुत उनकी लालसा उनके ग्रंथों में दी गई है। उदाहरण के लिए जैसे मैं एक लालसा को यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रसिद्ध ग्रंथ है विलाप कुसुमांजलि, उसमें वे अपने अनेकों लालसा को व्यक्त किए हैं। उसमें एक लालसा है, उसमें वे कह रहे हैं जशांक रंजित सिरा, कह रहे हैं कि जिसके छाप पड़ने से जशांक रंजित सिरा, जशांक रंजित सिरा तवमान भंग। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब आप मान कर जाते हैं तो मान भंग, तो आपके मान को मनाने के लिए, आपको मनाने के लिए जब श्री कृष्ण आपके चरणों में प्रणिपात करते हैं, आपके चरणों में गिरते हैं, तो जशांक रंजित सिरा, जिस के छाप से उनका सिर रंजित हो जाता है, शोभित हो जाता है। गोष्ठेंद्र सोनो रधिकम सुसपा मुपैति, और आपके चरणों में जो आलता है, महावर है, उससे उनका सिर रंजित हो जाता है, शोभित हो जाता है। और बहुवचन में बोल रहे सिरा मतलब मोर पंख भी रंजित हो जाता है, मुकुट भी रंजित हो जाता है, ललाट भी रंजित हो जाता है। और गोष्ठेंद्र सोनू का, नंद पुत्र का सुषमा अधिकम उपैति, भगवान की शोभा और बढ़ जाती है। देखिए राधा रानी के चरणाश्रित का कितना वैल्यू है, ये जो आलता है ये राधा रानी के चरण में है, लेकिन उसका स्पर्श पा करके कृष्ण की शोभा बढ़ जाती है। एक बात तो यह है कि जो राधा रानी के चरण में है वह कृष्ण के सर पर चढ़ जाता है, उसका यह उत्कर्ष होता है। राधा रानी के चरण का आश्रय लिया है तो उसका प्रभाव होगा कि कृष्ण के मस्तक पर चढ़ जाएगा, और मस्तक पर चढ़ करके ऐसा नहीं कि कृष्ण को कोई दुख दे रहा है, कृष्ण मस्तक पर धारण कर लेते हैं तो उससे उनकी शोभा बढ़ जाती है, उसका उनका भी उत्कर्ष होता है, राधा रानी के आश्रित का भी उत्कर्ष हुआ और उसके संपर्क से कृष्ण का भी उत्कर्ष हो जाता है। सुषमा उपैति, अधिकम सुषमा उपैति, कृष्ण की बहुत सुषमा बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है। लाक्षा रसह सकदा पदयो रधस्ता। रघुनाथ दास गोस्वामी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं कि कब ऐसा दिन होगा जो अलता राधा रानी के दोनों चरणों के निचले प्रांत में रहता है, नीचे रहता है, लगभग तलवे के नज़दीक रहता है, तो कब ऐसा दिन होगा कि न्यस्तो मयापि अतितरा छवि माप्स्यती है। कब ऐसा दिन होगा कि किसी दिन हमारे द्वारा लगाया हुआ अलता भी राधा रानी के चरणों में अधिक शोभा को प्राप्त होगा। तो यह अभिलाषा है। और इस स्तर की जब अभिलाषा या इस जाति की अभिलाषा हृदय में उदित होने लगती है, तो आज हमारे लिए जो समस्या है भौतिक आकर्षण, वे समस्या कहाँ लीन हो गया, कहाँ चला गया, इसका व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। तो हम यह कह रहे हैं कि भगवान अपने माया शक्ति के प्रेरित करके स्त्री पुरुष में आकर्षण भरे हैं, और प्रारंभिक दिनों में साधना के लिए बाधक हो सकता है, लेकिन भगवान ऐसी व्यवस्था भी दिए हैं कि उस व्यवस्था का अवलंबन करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, तो ये सब समस्या नहीं रह जाता है, परम सुख का आस्वादन करते हैं। रघुनाथ दास जैसे व्यक्ति के मन में यही अभिलाषा है कि कब वह दिन आएगा कि मैं अपने हाथों से राधा रानी के चरणों में अलता लगाऊंगा। और उस अलता के विषय में आप सुन रहे हैं कि राधा रानी के चरण का अलता है तो कृष्ण के मुख की शोभा बढ़ाने वाला है, कृष्ण भी उससे अधिकम सुषमा मुपैत बहुत अधिक शोभित होने लगते हैं। तो राधा रानी का आश्रय लेने से, वृंदावन धाम का आश्रय लेने से हमारी जो भी कठिनाई है खेल खेल में दूर हो जाएगी। इसलिए भक्ति में निराशा का कोई स्थान नहीं है, निराशा का कोई औचित्य नहीं, सही मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। हरे कृष्ण।